सूरा तोहा आयत नंबर 76 तक करेंगे। मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। लो जी सारी इंसान की कहानी एक आयत के अंदर आ गई। इसी से किस से हा की जमीर किस तरफ जा रही है? जमीन की बात हो रही थी ना, जमीन से हमने निकाल लिया, हमने तुमको पैदा किया, तखलीक किया, खलक ना हमने खलक पैदा किया ना हमने कुम तुमको। तीनों चीजें आ गई इसमें, फाइल भी आ गया, मफूल भी आ गया, फेल भी आ गया। यही तो अरबिक की ब्यूटी है, एक लफ्ज के अंदर सब कुछ आ गया। और उर्दू में बोलने लगे तो कितने सारे अल्फाज, हमने तुमको पैदा किया। तो फरमाया कि हमने तुम्हें पैदा किया इसमें से, किसमें से, इसी जमीन से। तो वाकई आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे बाप सबके हैं, वो इसी मिट्टी से तो पैदा हुए। नंबर टू ये कि अगर कोई कहे कि मैं तो नहीं ना मिट्टी से पैदा हूं, तो जो नुतफा जिससे इंसान बनता है, वो नुतफा भी तो उन्हीं गिजाओं से पैदा होता है जो इसी जमीन से ली गई। अगर इंसान गोश्त खाता है तो जिस जानवर का गोश्त खाता है वो भी तो इसी जमीन से चढ़ चुक रहा है, उसका गोश्त भी तो इसी जमीन के घास फूस से ही बना हुआ है, ठीक है, तो वो नुतफा भी उसी से बना, उस मिट्टी से। कहते हैं कि जिस मिट्टी से इंसान पैदा होता है उसी के अंदर जाता है। तो पैदा किया और फीहा नुईदुकुम, इसमें हम तुमको लौटाएंगे। यानी इंसान को देखें तो वो इसी मिट्टी के अंदर ही चला जाता है, इसी में दफन होता है। अब चाहे वो समुद्र में भी डूबे तो है तो इसी जमीन के अंदर ही ना। किसी जानवर के पेट में चला जाए तब भी वो जानवर भी मर मिट के इसी जमीन के अंदर होगा। अमिन हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से हम तुमको निकालेंगे एक दूसरी मर्तबा भी, इससे खड़ा करेंगे, इसी से इंसान उगेंगे। जब अल्लाह ताला कयामत को बर्पा फरमाएगा तो इसी से कब्रें फटेंगी और इंसान निकलेंगे। तो इस इंसान की कहानी तो इसी मिट्टी की है और यही उसका वजूद है। इस मिट्टी के वजूद पे कितनी मेहनत करता है ना, इतना इसको संवारता है, फिर इसके अंदर ही चला जाता है और इसी के अंदर से उठ जाएगा। यही उसकी कहानी है पूरी। और जब कब्र की मिट्टी डालने लगते हैं तो बाज दफा यही आयत लोग पढ़ते हैं, इसलिए कि एक हदीस के अंदर ये आता है। लेकिन जितनी हदीस भी इससे मुतालिक हैं ये आयत पढ़ने से, उस सनद अंसारी ज़ईफ है। सिर्फ एक हदीस है इब्ने माजा में, वो सही हदीस है, और उसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजा पढ़ा और फिर जब कब्र की तरफ तशरीफ लाए तो उसके सर की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मरतबा मट्टी डाली। ये तीन मरतबा मट्टी डालने की तो हदीस मौजूद है, लेकिन ये आयत पढ़ना साथ ये वाली जो अहादीस है वो ज़ईफ है सनदन। तो अल्लाह ताला ने याद करा दिया कि मिट्टी से इंसान पैदा हुआ है ना, इसी मिट्टी के अंदर उसको चले जाना और इसी में से इसको निकलना है। तो इंसान अपनी औकात को याद रखे कि वो क्या चीज़ है। और कोई ऐसा, कोई चाहे कितना भी बड़ा बादशाह हो या कितना भी बड़ा खुदाई का दावेदार हो, आखिर को वो मर के इसी में गया, ठीक, कोई भी इसके अलावा कुछ नहीं। इसी से पता चलता है कि इंसान की हैसियत क्या, क्या चीज़ है वो, मिट्टी, सिर्फ मट्टी का पुतला है, मट्टी में तुझे जाना। तो फिर तकबर कहां से आ गया, बड़ाई कहां से आ गई, ये एहसास कहां से आ गया कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं। वलकद अरैनाहु आयातिना, और अलबत्ता तहकीक दिखाई हमने हु उसको आयातिना अपनी निशानी। कुल्लाहा सारी की सारी, किसको, हु की जमीर किधर जा रही, फिरौन को। फकज़्ज़बा व अबा, उसको कहा भी था कि आयत 48 में क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कहा था, अन्ना अल्लाह अला मन कज़्ज़बा व तवल्ला, अज़ाब उसके ऊपर है जो कि झुटलाए और मुंह मोड़े, और उसने यही किया, झुटलाया और इनकार किया। जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया हमने उसको सारी ही निशानियां दिखा दी। सारी का मतलब ये नहीं है कि हर निशानी जो दुनिया जहान की है वो हार निशानी उसको दिखा दी, ये नहीं मतलब आया कुल्ला हासे, मतलब ये जैसे कि आप कहते हैं ना मैंने तो सारी दुनिया देख ली है, उसका मतलब ये तो नहीं कि आप सारी दुनिया चप्पा चप्पा घूम के आ गई है, बल्कि मतलब क्या है कि सर बहुत सारी चीजें मैंने देख ली है। तो आयाति ना कुल्ला का मतलब है कि बहुत सारी निशानियां दिखाई, देखे क्या नहीं उसने देख लिया था, ये असा को सांप बनते हुए देख लिया उसने, यदि बेहदा देख लिया उसने, ये जो इनके ऊपर सारे अजाब आए थे जूओं का मेंढकों का टिड्डियों का वो सब देख लिए, समुद्र का फटना देख लिया मूसा अलैहि सलाम के आगे जब समुद्र फटा था वो भी इसने देख लिया, फिर कितनी सारी निशानियां इसने देखी, कहत साली इनके ऊपर आ गई, फलों की कमी वगैरह हो गई वो भी इसने देख ली थी, लेकिन फिर भी माना नहीं। जिसे नहीं मानना होता वो कोई निशानी देख के भी नहीं मानता। ये सूरह यूसुफ में हम पढ़ चुके हैं ना अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कितनी निशानियां आसमानों जमीन में जिनमें ये रोज चलते फिरते फिर भी गौर फिक्र नहीं करते। और यहां से हमें ये पता चलता है जो अल्लाह की आयात का इनकार करना है ना, चाहे वो आयात कुरान की है चाहे वो कायनात में बिखरी हुई निशानी है, कि मैं नहीं मानती कि ये अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि ये सूरज को अल्लाह ने पैदा किया, या मैं नहीं मानती कि अस्तगफिरुल्लाह के माज अल्लाह के ये हम कहीं के आसमान को अल्लाह ने पैदा किया, ये मैं नहीं मानती, ये नहीं मैं मानती, तो ये चीजें इनका इनकार करना ये भी निशानी है, ये कायनात की निशानी है। और एक आयात है कुरान की, इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुरान की आयात को, आयत का माना क्या होता है निशानी, कुरान की आयात को जुमले नहीं कह सकते, वर्सेस नहीं कह सकते, इसे इंग्लिश में भी नहीं वर्स कहना चाहिए आया ही कहना चाहिए, तो पास जो वर्सेस कह देते हैं वर्सेस पोएट्री में हो सकते हैं लेकिन ये कुरान में थोड़ी है, वो तो इसका माना ही नहीं बयान कर सकता, इसीलिए इनको आयत कहा गया क्योंकि ये निशानी है, जुमला निशानी नहीं होता, फिकरा नहीं है ये, जुमला नहीं है ये आयात है। तो कायनात में भी आयात फैली हुई है और कुरान में भी आयात है, तो जो इनसे इनकार करता है ना, जो इनको नहीं मानता, उसका जो रवैया है वो फिरौनी रवैया है, ये फिरौनी तर्ज अमल है, ठीक है, जो फिर जाहिर है जैसा रवैया इख्तियार करेगा वो उसके पीछे होगा ना कयामत के दिन, जिसकी कॉपी करेगा उसी के साथ होगा। काला उसने कहा अजीता ना नहीं तुखरी जाना भी ना अर्दी ना, हालांकि मूसा अलैहि सलाम ने तो ये कहा भी नहीं कि तू आया हमारे पास कि हमारी जमीन से हमें निकाल दे, अच्छा अब ना कहा हमें हमारी जमीन से, हमें हमारी जमीन से, वरना फिरौन तो इतना मुतकब्बिर था वो तो कहता था मैं मेरे से करने से, उसने हम क्यों कहा, इसलिए उसने इस दफा हम कहा क्योंकि वो सारों को साथ मिलाना चाहता था कि देखो मेरा ये दुश्मन नहीं है मूसा, ये तो हम सबका ही दुश्मन है, ये तो हम सबको निकालने आया। और इस तरह के टैक्टिक्स होते हैं ऐसे लोगों के जो लोगों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं कि वो कहते हैं तुम्हारा नुकसान है ना इसमें, भाई हमें क्या है हमारा तो कुछ नहीं है लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाएगा भाई, तो हम सबको जमीन से निकालने आया है, हालांकि उन्होंने कोई कहा था कि तुम यहां से निकल जाओ, उन्होंने तो कहा बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो, इसको तो निकलने को कहा ही नहीं, लेकिन देखो कैसे उसने बात को बदला और किस तरह से उसका अपना ही माना बना लिया कोई और भी, सेहरी का या मूसा अपने जादू के जोर से तू हमें यहां से निकालने आया है हमारी जमीन से। अब जितने सुनने वाले हैं उनके जहन में क्या है, इसको भी कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं ब्रेन वॉशिंग करना, लोगों की ब्रेन वॉशिंग करना, इस तरह के जो सुनने वाला होगा कहेगा अच्छा वाकई ये हमें निकालने आ गए और जादू के साथ जादू कर देगा हम सारे यहां से निकल जाएंगे, हम इस हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, हमारा मुल्क हमसे चला जाएगा, हमारी आजादी चली जाएगी, फलनातीयन्नक बिस्सिह्र मिथलिही, तो बस अलबत्ता जरूर हम भी लाएंगे इसके जैसा जादू, जैसा तू लेकर आया इस तरह का हम भी लेकर आएंगे, फजाल बईना ना बईना का माओ ऐदन, तो बना ले कोई मुकर्रर कर ले ठीक है, कोई फिक्स कर ले हमारे और अपने दरमियान कोई वादे की जगह वादे का वक्त, ला नुखलिफुहु, नहीं हम खिलाफ करेंगे इससे, नाहनु हम वला अंता और ना तुम, मकानन सुवा, एक जगह जो बराबर की हो सीधी हो। अब क्या कह रहा है कि ठीक है तुम हमें अपने जादू के जोर से निकालना चाहते तो हम भी कोई जादू ले आते तुम्हारे जैसा, तुम्हारे जैसा ही कोई जादू, बड़ा जादू करके दिखा रहे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने निशानियां दिखाई थी ना, और ये एक दफा भी नहीं हो गया याद रखे कि अभी मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं और वहां पे ये सारा कुछ, ये जाहिर है इतना अरसा तबलीग करते रहे, उसने ये सारी निशानियां देख ली, उसने ये सांप बनते हुए देख लिया असा को, उसने हाथ उनका ग्लोइंग होते देख लिया, उसने ये सारी निशानी देख ली, उसने उसके बाद कहा बस तू हमें पता है तू असल में ये बात है हमारी जमीन पे कब्जा करना चाहते हो, हमें यहाँ से निकालना चाहते हो, और तुम्हारे पास जादू है, इसको भी जादू कह दिया। और उस जमाने में जादू का बड़ा ही जोर था, तो कहता हम भी ले आएंगे जादू, ठीक है जादू ही लाना है ना, तो तुम एक कोई जगह मुकर्रर कर लो। नहीं उनको ऐसे कहा कि जैसे कि मैं, जैसे होता है ना कि दूसरा तो कुछ भी चीज नहीं है, तो ठीक है तुम करो मुकर्रर, हम देख लेंगे तुम्हें, और हम तो कोई खिलाफ नहीं करेंगे, और ना तुम करना, और अपना पहले कहा, इसलिए कि आप अपने आप को बड़ी चीज समझता है, अपने बड़ाई दिखाने के लिए कि हम तो नहीं भागेंगे इससे, और तुम ना भागना फिर। और एक जगह हमवार क्यों, या सुवा का मतलब ये भी है कि फ्लैट जगह हो, क्योंकि फ्लैट जगह होगी तो सारा कोई जो भी होगा वो देखा जा सकेगा, सब देखेंगे, हम भी अपना जादू ले आते हैं, तुम भी अपना जादू ले आओ, तो सब देखेंगे। दूसरा एक दरमियान की जगह, दरमियान की जगह ना तुम्हारे से भी ज्यादा दूर ना हो हमारे से भी। मजीना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर वक्त मुकर्रर तुम्हारा जो है वो यौम जीना का रख देते हैं। वो जीना का मतलब ये है कि खूबसूरती का दिन, कहते हैं कि वहां पे कोई जश्न होता था या कोई उनका ईद का दिन था, कोई फेस्टिवल था जिसमें बड़ी रंगीनियां रंगी आपको पता है जश्न वगैरह में ये बत्तियां ये झंडियां ये सब चीजें होती हैं, तो जीना मतलब खूबसूरती का दिन, कि वो हम रख लेते हैं। जब उसकी क्या हिकमत है, उस दिन फिर सारे लोग आ भी सकेंगे, जाहिर है छुट्टी का दिन होता है, फरागत होती है, जश्न होता है, लोगों को ऐसी चीजें देखने का भी शौक होता है कि चलो देखते हैं जाके। नासु दोहा, और हाँ इकट्ठे किए जाएं लोग दोहा के वक्त, टाइम भी बता दी मैंने आपको, बताया ना मौईदा के अंदर जगह भी और टाइम भी दोनों होते हैं, तो उसने कहा था जगह और टाइम बता दो, तो जगह यौम जीना, वो तो जगह तो नहीं है लेकिन इसका मतलब है कि वो कोई जश्न किसी जगह पे मनाया जाता था, तो बताया सबको कि फला मैदान जो है वो वहां पे ये सारा होता है, मतलब कोई स्टेडियम आप समझ लें, और वहां टाइमिंग क्या दी दोहा, इसलिए कि अगर दोहा का वक्त होता है जब सूरज जरा चढ़ जाता है 9 साढ़े 9 का वक्त, बिल्कुल भी दोपहर हो जाए तो गर्मी हो जाती है, अगर बिल्कुल ही मुंह अंधेरे बुला लिया तो नजर क्या आएगा सबको। अच्छा अब आप देखेंगे ये मुकाबला फिरौन के साथ है, कोई छोटी बात नहीं। फतवल्ला फिरौन, तो पलटा फिरौन। अच्छा फिर अब ये मजलिस बर्खास्त हो गई, फिरौन अब गया, फजमा कैदा हो सुमाता, फिर उसने इकट्ठी की अपनी चालें अपने हथकंडे, यानी अपने जादूगर बुलाए जगह जगह से, हम सूरह आराफ में इसकी पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं। सुमाता फिर आ गया, काल अला मूसा, अब जब सारे जादूगर इकट्ठे हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको एक तकरीर की, उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वही लाखों, और तुम्हारा जिसको कहते हैं तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम हलाकत हो तुम्हारे पर, तुम अफसोस है तुम्हारे पर, ला तफ्तर अल्लाह ही का दिवन, अल्लाह पे झूठ तो ना बांधो, और युस हिता कुम भी आजाद, तो वो फना कर देगा तुमको आजाद के साथ, वो ऐसा तुम्हें खत्म करके देगा, जड़ से उखाड़ देगा, अल्लाह पे झूठ ना मानो। कैसे अल्लाह के ऊपर झूठ मानना था, क्योंकि ये जो जादू है ये तो झूठ है, झूठ है ना, अल्लाह पर बोहतान है। वकद ख्वाब मन इफ्तारा, और जो घर लेता है अल्लाह के ऊपर झूठ वो नामुराद होता है, कभी ये कामयाब नहीं हो सकता। जब उन्होंने ये बात सुनी तो फतनाजाओ अमरहम बैनहुम, तो वो आपस में झगड़ने लगे। अब उनके अंदर क्या झगड़ा हो गया जादूगरों के दरमियान, कि वो कहने लगे कि बाज ने जो डर गए मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुन के, कि देखो अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा अगर तुम इस तरह से ये मेरे मुकाबले में अल्लाह के मौजों के आगे जादू लेकर आ जाते। तो उन्होंने कहा कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हुए तो क्या होगा हमारा, हमें लगता है इसका मुकाबला नहीं करना चाहिए। कुछ दूसरे थे उन्होंने कहा नहीं 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 कुछ नहीं होता, कुछ नहीं ये ऐसे ही जादूगरी है, वो कहते हैं जादूगर तो नहीं लगता, जादूगर तो ऐसी बातें नहीं करता, ये ना हम इसको साथ मुकाबला करें तो हमें ही कुछ नुकसान हो जाए। तो अब ना ये उनके दरमियान एक झगड़ा सा खड़ा हो गया, वह असर रुन नजवा, और उन्होंने चुपके चुपके सरगोशियां शुरू कर दी, यानी अब क्या करते हैं, एक तरफ फिरौन है, फिरौन के सामने तो नहीं जाकर कह सकते कि ये तो नहीं कि ये सच्चा है या कुछ ऐसी बात नहीं कर सकते, और फिर लोग भी ना कहीं सुन लें, लोगों ने अगर सुन लिया तो क्या होगा। तो बड़ी राजदारी से उन्होंने ना आपस में बातें की, लेकिन उनके अंदर एक शक पड़ गया था। कालू, उन्होंने कहा फिर आपस में सरगोशियां करते हुए कहा, इन हादानी लसाहिरानी, हम लोगों को ये कहेंगे जाके कि ये दोनों जो है ना ये जादूगर, यूरीदानी अन युखरिजाकुम मिन अर्दिकुम, कि ये चाहते हैं कि तुम्हें निकाल दें जमीन से तुम्हारी, बिसिहरिहिमा अपने जादू से, और क्या चाहते हैं। अब ये बात एक समझने की, ये तो पहले भी उसने भी कहा फिरौन ने कि ये तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकालना चाहते, तो हम भी ये कहेंगे ये बस दोनों जादूगर हैं, हमें पता ही है जादूगर हैं, तो आपस में प्लानिंग कर रहे हैं वो। वयदहब बितरीकतिकुमुल मुसला, तुम्हारा मिसाली तरीका तुमसे ले जाना चाहते हैं, तुम्हारा जो इतना जबरदस्त कल्चर, तुम्हारा वे ऑफ लाइफ, तरीका तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो वे ऑफ लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, ये तुमसे ले जाना चाहते हैं, तुम्हें इससे हटा देना चाहते हैं। अब देखिए ना, ये बात तो सही है कि फिरौनियों का जो लाइफ स्टाइल था और जो इनका कल्चर और जो इनके दुनिया के अंदर एक डंका बजता था, उसका अंदाजा आप इससे करें कि बाद वाले बादशाह भी उसकी तरह के मॉन्यूमेंट्स, उस तरह के महलात बनाने की कोशिशें करते रहे इवन आज तक। हालांकि फिरौन है, फिरौनी तहजीब कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि वो ही मॉन्यूमेंट्स के छोटे छोटे वो क्या उसको कहते हैं, जो मॉडल्स होते हैं वो रखे होते हैं, वो बेच रहे होते हैं, और जो उसकी ममीज हैं और जो उनके वहां के वो आसार उनके फिरौनी फिरौनी तहजीब के हैं, वो आज भी बिकते भी हैं। लोग बड़ा इस चीज को समझते हैं कि ये फेरोज, द फेरोज कुक, बड़ी बात समझते हैं, हालांकि वो तो अल्लाह के अजाब के अंदर गर्क हुआ बंदा था और उसके साथ वाले भी जो उसकी कौम थी, लेकिन आज भी लोगों के दिलों के अंदर उसकी मरूबियत और उस जमाने के उनके लाइफ स्टाइल और उनकी चीजों की मरूबियत आज भी है, तो सोचे उस जमाने में क्या होगी। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा तो लाइफ स्टाइल इतना मिसाली, इतना एग्जाम्पलरी है, इतना दुनिया में तुम्हारी शानो शौकत है, ये बस चाहते हैं कि सारा तुम्हारा ये ले जाए। कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 20 साल इनमें तबलीग की थी, बाज रिवायात में आता 20 साल, और उनके अंदर सिर्फ यही था कि तौहीद का दर्स देते थे और कह रहे थे बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो, आजाद कर। और हालांकि वो सिर्फ 10% आबादी थी इनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज को भी इतना बड़ा मसला बना लिया और तौहीद की दावत को अपने लिए खतरा समझ लिया। इसलिए कि जहां तौहीद का दर्स दिया जाए ना, वहां अल्लाह की हुक्मरानी है, वहां फिरौनी निजाम नहीं चल सकता, वहां शिर्क का निजाम नहीं चल सकता, वहां जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। और ये तो जुल्म के ऊपर ही खड़ी हुई एम्पायर थी, शेर और जुल्म, वो तो खुद अपने आप को खुदा कहता था और जुल्म की उसने इंतहाई की नहीं थी। और जब भी याद रखें, जब भी लोग इस तरह के जाबिर लोग होते हैं और ऐसे लोग होते हैं ना, और उनकी हुकूमतों को खतरा होता है, तो वो ये नहीं कहते कि हमारी हुकूमत को खतरा है, उस तरह से थोड़ी कोई मानेगा। वो अवाम को कैसे साथ मिलाते, तुम्हारे मुल्क को खतरा है, मिल्लत को खतरा है, कौम को खतरा हो गया। अब वो सारे सोचते हैं हमारी कौम को खतरा हो गया, अच्छा भाई वो उनके इकतदार को खतरा होता है, यहाँ पे फिरौन के इकतदार को खतरा था, और उसने कह दिया कि हमारा तो मिसाली निजाम जिंदगी हमसे छीन लेंगे, हम इतनी शानदार तहजीब हैं, हमारी सकाफत ऐसी है, और ये छीनने के लिए आ गए हैं, खत्म करके रख देंगे सब, जिस जिस जो हमने इतनी उससे मेहनत से बनाया वो सब खत्म कर देंगे, ये कौमी मफाद का मसला है, सब खड़े हो जाओ, फाजमियों का ईदा कुम, इकट्ठी कर लो तुम अपनी सारी तदबीरें, जमा हो जाओ, सो तू सफा, फिर अता याती से है, आओ सफा, सफ दर सफ होके, यानी ऐसे, यानी इसका मुकाबला करो मूसा का कि सफ दर सफ, जिससे सफों में आने से ना एक रोग पैदा होता है। तो अब ऐसी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या बना के रख दिया। मैंने आपको बताया ना, जैसे आज ये भी देखे, हजारों साल पहले भी वही बातें थी और आज भी वही बातें हैं। आज भी जो भी हुकूमतें अपने आप को एस्टेब्लिश रखना चाहती हैं और वो सोचती हैं कि हमें खतरा हो रहा है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। तो उसने कहा वक़द अफलह अल्यौम मन इस्तअला, आज के दिन कामयाब वही होगा जो गालेबाज है, जो इनको हरा देना वही कामयाब होगा। अल्लाह अकबर, सदियों से वही बातें हो रही हैं। कालू या मूसा, उन्होंने कहा ए मूसा, ये जादूगरों ने, आप कहा अब मैदान खुल गया, अब पता नहीं वो गए उन्होंने कुछ सोच विचार की, झगड़ा किया आपस के अंदर, फिर बातें की, फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसी एक स्कीम बनाते हैं कि लोगों को ये हम कहेंगे, फिर बाहर आए, फिर फिरौन ने उनको कहा भाई जमा होके दिल जमी के साथ लड़ना, देख लो तुम्हारा ये तुम्हें खत्म करने आया, इस जमीन से निकालने के लिए आया, तो ये सारी तहजीब को मिटा के रख देंगे ये दोनों, और सफ दर सफ होके जाना, बस आज कामयाब वही है जो गालिब आ जाएगा, बस तुमने गलबा पाना है। अब वो आए मैदान में, उन्होंने कहा मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकुना अव्वला मन अल्का, क्या आप डालेंगे या हम डालें पहले, अपना यानी जादू जो है हम डालें या आप डालेंगे। अच्छा बाज तफसीरों में ना बड़ी दिलचस्प बात लिखी हुई है कि वो कहते हैं कि जो ये जादूगर थे उनका अदब देखें, जो उन्होंने मूसा अलैहि सलाम के आगे अदब दिखाया ना कि मूसा आप डालेंगे हम, अब आगे कहते हैं हम ही डालेंगे, हम बड़ी चीज है, ऐसे नहीं आप डालेंगे या हम डालें, कहते हैं उनका जो अदब नबुवत के सामने था, इस अदब की वजह से ही अल्लाह ताला ने उनको पता नहीं हिदायत दे दी, कि यानी तकबर नहीं था ना उनके अंदर। अच्छा काला बल अलकू, मूसा अलैहि सलाम अब मैदान में खड़े हुए हैं, फरमाया तुम डाल दो। फाइदा हिबालुहुम व असीयुहुम युखय्यलु इलैह, अच्छा अब जो उनकी रस्सियां थी और लाठियां थी वो ख्याल जाता था इसकी तरफ, मिन सेहरीहिम उनके जादू की वजह से, अन्ना तस आके वो दौड़ रही हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि वो सांप बन गए, लेकिन उनको नजर ऐसी आ रहा था कि ये सांप बन गए। एक बात जहन में रखिएगा, जो जादूगर होता है ना वो किसी चीज की माहियत को नहीं बदल सकता, यानी उसकी फॉर्म को चेंज नहीं कर सकता, मतलब ना कि किसी को बंदर बना दिया, ऐसे नहीं कर सकता। हाँ ये जरूर कर सकता कि किसी को बंदर नजर आने लगे, वो है इंसान लेकिन उसको नजर ये आता कि ये बंदर, तो इसको कहते हैं आसाब के ऊपर असर करना, ये भी जादू की एक किस्म होती। अब थी वो रस्सियां और लाठियां ही थी, मगर निगाहों पे जब जादू कर दिया ना तो नजर में क्या आ रहा है कि ये सांप है जो हिल रहे हैं दौड़ रहे हैं, अब पूरे मैदान में सांप दौड़। बाद रिवायत में आता है 72 जादूगर थे, बाद में आता है हजारों जादूगर थे, इतने जादूगर और कितनी रस्सियां और लाठियां लाए होंगे, क्योंकि जाहिर है फिरौन ने उनको जब तैयारी कराई है उनको बताया कि भाई तुमने किस चीज का मुकाबला करना है, उन्होंने पूछा ही होगा ना, तो इसने यही बताया कि वो आसा से सांप बनाते हैं, उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है सांप ही बनाने हैं ना, वो ले आए उन्होंने रस्सियां और लाठियां डाली, वो ऐसे लोगों को जैसे हिप्नोटाइज करना होता है ना, इस तरह उनको नजर आने शुरू किया कि ये सांप ही है, इवन मूसा अलैहि सलाम को भी, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया युखय्यलु इलैह, ख्याल जाता था इस तरफ, यानी ये सिर्फ नजरों का धोखा था, असलियत नहीं थी, असल में सांप नहीं थे। तो एक ये जादू की फॉर्म है, दूसरा जादू का तरीका वो होता है जो जिन्नात के जरिए किया जाता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है, और उसमें जादूगर शयातीन जिन्नात के साथ मिल जाते हैं यानी उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, और फिर वो शयातीन ही जो जिन्नों में से होते हैं वो इनको फायदा देते हैं, लेकिन इसके लिए इन जादूगरों को उन शयातीन को राजी करना पड़ता है, उनके साथ दोस्ती करने के लिए उनके ऐसे कुछ काम करने पड़ते हैं जिससे वो खुश हो जाए, तभी वो दोस्ती करेंगे ना, तो वो फिर इतने गलीज काम, इतने ग्रोस काम है कि अगर आप सुन भी लेना तो आप वॉमिट कर देंगे, इतने गंदे काम कराते हैं इंसानों से, ये करो ये करो ये करो, तो जब वो अरसा दराज तक ये काम करते हैं ना, जैसे गंदे रहना, नहाना ही नहीं, गंदे रह के वो सारे काम करते हैं, तो फिर वो जो अजाजील होता है, जो जो शैतान का नाम है अजाजील, वो फिर बाकायदा इसके नाम के वजीफे भी करते हैं, इसके नाम को पुकारते हैं, तो जब अजाजील को ये यकीन आ जाता है ना कि बस ये मेरा ही बंदा बन गया, अब ये मेरा है, तब वो उनकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। फिर ये उसके जरिए जादू करते हैं, तो वो कहते हैं ना जिन्नात कब्जे में है और उससे वो हो रहे हैं, जादू कर रहे हैं, ये सारी ये इस तरह की चीजें, उन्होंने पीछे पीछे बहुत चिल्ले काटे होते हैं इस तरह की चीजें करके, ऐसे ही वो काबू आ जाते हैं, ऐसे नहीं वो किसी के पीछे लग जाते। तो अस्तगफिरुल्लाह, इसीलिए जादू की सजा भी, जादूगर की सजा ये है कत्ल कर देना उसको। तो ये जो थे ना, इन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी। अब वो ऐसे दौड़ने शुरू हो गए, पूरे मैदान में दौड़ है। फाउजा सफी नफसी खीफत मूसा, तो छुपाया अपने दिल में खौफ मूसा अलैहि सलाम ने, मूसा अलैहि सलाम को खौफ आया इस देख के। एक तो ये वैसे ही खौफ आया कि इतने सारे सांप बन गए, ये खौफ आया। दूसरा नंबर टू, दूसरा खौफ ये आया कि अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरा सही है कि इनका सही है, इनके भी सांप बने हुए मेरा वाले। अब मूसा अलैहि सलाम को क्या पता कि मेरा, जब उन्होंने तो सिर्फ असा को सांप बनते हुए देखा ना, उनको ये तो नहीं पता कि इसके बाद ये क्या करेगा जो मेरा वाला सांप है। वो कहते हैं लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसकी बात सच्ची है, अब क्या होगा, इस वजह से खौफ खाए। तो इसका मतलब ये हमें समझ आता है ना कि जो मोजा होता है वो खालिसतन अल्लाह की तरफ से होता है, इवन नबी के हाथ में भी कुछ नहीं होता, और नबी को भी नहीं पता होता कि इसकी नौयत क्या है, ना ही उसकी कोई मर्जी होती है। तो एक तो तभी खौफ जो मैंने आपको बताया कि उसकी वजह से भी हो सकता है, दूसरा ये भी कि लोगों को कैसे पता चलेगा। मूसा अलैहि सलाम का भी आसा है, उन्होंने भी उससे आसा से सांप बना लिया, मूसा अलैहि सलाम भी बना लेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा कोई ऐसी बड़ी बात है, उनको क्या पता चलेगा किसकी बात सच्ची है। अल्लाह, और तभी खौफ अंबिया में भी हो सकता है। कुलना, अल्लाह ताला ने वही की मूसा अलैहि सलाम को, ला तखफ, आप मत डरे, इन्नका अंतल आला, आप ही गालिब होंगे, वा अल्की माफी यमीनी का, और डाल दें जो आपके दाएं हाथ में, तलकफ मा सनाओ, निगल जाएगा जो उन्होंने बनाया। अब देखिए ना, आप स्ट्रेस की एक इंतहा देखेंगे, एक अंदर ही अंदर घबराहट महसूस हुई, तो इससे पता चलता है कि देखें ये चीज भी एक इंसान के साथ नेचुरल है ऐसे हालात में, लेकिन फिर अल्लाह की मदद जब आती है ना तो इंसान फिर स्ट्रोंग हो जाता है। फिर इंसान जो अपने अंदर एक घबराहट की कैफियत है वो दूर हो जाती है। तो ये आसान नहीं था, इसीलिए मैंने आपको कहा वहां पे जाके खुद को, अपने आप को सोचे कि एक बंदा खड़ा हुआ और एक तरफ मुकाबले में इतने लोग आए हैं और उनकी सारी सांप बन गए, सारे सांप घूम रहे, एक मैं सांप बना दूंगा तो क्या ये क्या फर्क पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, तो एक ही सांप है और इनको देखो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया आप डाल दें, तलकफ मा सनाउ, वो निकल जाएगा जो उन्होंने बनाया। इन्नमा सनाउ कैदु साहिर, बेशक उन्होंने बनाई है चाल एक जादूगर की, इनकी जो इन्होंने जो बनाई है ना ये सब, ये सिर्फ चालें हैं जादूगरों की, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं। और फिर बहुत बड़ी बात, वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता, और जादूगर कभी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता जहां से भी आ जाए। इसीलिए इस पार्ट को आयत के ना, बाज दफा लोगों के ऊपर जादू होता है या कुछ है तो पढ़ने को कहते हैं कि ये आप पढ़ें, वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता, साहिर कहीं से भी आ जाए कामयाब नहीं होगा। इंसान का खौफ भी जाता रहता है, इंसान अपने आप को भी कहे कि जादू ठीक है, जादू बरहक है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा जादू का असर होता है जो जितना कमजोर होता है। तो जादूगर का जादू की कोई हैसियत नहीं है, ये अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर नहीं कुछ कर सकते, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते जहां से भी आ जाए, क्योंकि ये सारा धोखा होता है, झूठ होता है, बातिल है। फअल्क़िया अस्सहरतु सुज्जदन, अच्छा अब जू ही ये हुआ कि उन्होंने डाला अपना आसा तो वो इतना बड़ा सांप बन गया, और जितनी सांप थे छोटे छोटे नजर आ रहे, वो क्या थे सांप तो थे ही नहीं, रस्सियां और लाठियां ही थी, ऐसे हिलती भी नजर आ रही थी सांपों की तरह, तो वो तो सारे को निगल गया। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया। तो अब जादूगरों को तो पहले ही थोड़ा सा वो हो गया था ना एक दिल के अंदर ये बात के हो सकता है ये सच्ची हो, वो फौरन सजदे में गिर गए। कालू और कहने लगे, आमन्ना भी रब्बी हारून व मूसा, हम ईमान ले आए रब्बे हारून और मूसा अलैहिस्सलाम की। अब होना तो ये चाहिए था कि फैसला तो हो गया कौन जीता है और कौन हारा है। ये ना सिर्फ के नाकाम हो गए थे जादूगर बल्कि वो आगे से सजदे में भी गिर गए। अब ये इतना बड़ा हजूम ये सारा कुछ देख रहा है मगर असर किसके ऊपर सिर्फ हुआ, इन जादूगरों पे। क्यों उनके ऊपर क्यों सिर्फ असर हुआ, होना तो चाहिए था फिरौन भी गिरता सजदे में। इसलिए कि याद रखें जो जिस फील्ड का माहिर होता है ना या जिस फील्ड को जानता होता है वो ही जान सकता है कि क्या, जैसे हीरे की पहचान जौहरी को है। अब आपके सामने एक चमकता हुआ भी रख लें अगर हीरा रख लें आप समझेंगे ये जो चमक रहा है ये भी हीरा ही है, लेकिन जौहरी को पता है ये हीरा नहीं है। इस तरह बाज दफा देखें आप किसी लेक्चर को सुनने जाते हैं जो इल्म वाला बैठा होता है उसको पता चल जाता है कि ये जो बोलने वाला है कितने पानी में है, इधर उधर के आए बाएं शाएं करने लगा और टाइम पास कर रहा है या वाकई इसके पास कोई सब्सटेंस है। जो बाकी लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ जी बहुत अच्छा लेक्चर बहुत अच्छा दर्स, उनको समझ नहीं होती ना। जो इल्म वाला बैठा हुआ जाएगा उसको 1 मिनट में समझ आ जाएगी कि ये जो बोलने वाला है ये कुछ है भी कि ऐसे ही है। इसी तरह वो जादूगर थे आखिर, उनको 1 मिनट में पता चल गया कि ये जादू है ही नहीं। उन्होंने अपनी भी रस्सियां और लाठियां डाली थी, उनको ये पता है कि जादू क्या चीज होती है और जादू की एक्सटेंट क्या है, किस हद तक जा सकता है जादू। उन्होंने देखा ये जादू है ही नहीं, ये तो वाकई मौजा है। अब क्या शक रह गया सा, लेकिन फिरौन तो फिर भी ना माना, ये सदे में गिर गया। अब ये बड़े बड़े जादूगर थे, ये बहुत कोई छोटी मोटी चीजें नहीं थी, मिस्र में वैसे ही जादू का बहुत जोर था और ये भी कोई माहिर जादूगर ही थे जो फिरौन के लिए आए थे, छोटों को थोड़ी लेकर आना था उसने। तो जो ही उनके आगे हक खुला उन्होंने फौरन सजदे में सर डाल दिया और फौरन ये ऐलान कर दिया कि हम ईमान लाए हैं हारून के रब पे और मूसा के रब पे। हारून का नाम पहले क्यों लिया और मूसा का बाद में क्यों, इसलिए कि हो सकता था फिरौन ये कह दे कि मूसा का रब तो मैं हूं, मैंने ही पाला है मूसा अलैहिस्सलाम को, फरमाया जो रब है हारून का और मूसा का। और अब फिरौन की बड़ी सुबकी हुई, बड़ी देखें शर्मिंदगी की बात है ना कि इतना बड़ा बादशाह और इतनी डींगे मारी नहीं और इतना हम कर लो जो दिन दिन लेकर आना है और हम उस दिन तुम्हारा मुकाबला करेंगे और भागने की जरूरत नहीं और इतनी बातें और इतना बड़ा इसका रोब और दबदबा और शान और अब क्या है सबके सामने हार गया। अब उसने कुछ तो कहना था ना, फिर उसने एक दाव चला, फिर एक और तरीका उसने किया। और जब कोई हार जाता है ना तो फिर यही कहता है धांधली हो गई जी हमारे साथ धांधली हो गई, पहले मिले हुए थे इनके साथ तो फलाम मिला हुआ है फलाम मिला हुआ। तो उसने कहा काला आमन तुम लहू कबला अन आदन लकुम, तुम इसके ऊपर ईमान ले आए हो इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, यानी मेरी इजाजत के बगैर ये कैसे हो सकता है तुम मेरी राया होकर इसके ऊपर ईमान ले आए। इन्नहु लकबीरुकुम, असल में बात यह कि तुम्हारा ये बड़ा है अल्लदी अल्लमकुम सिहर, जिसने तुम्हें सिहर सिखाया है जादू सिखाने वाला तुम्हारा उस्ताद है ये, असल तुम इसी के चेले हो इसके ही शागिर्द हो। अब देखें इसी को तो फिरौनियत कहते हैं ना, हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी जो जालिम और जाबिर है ना वो कहते हैं इसी किस्म की बातें, हमारी इजाजत के बगैर कैसे ही हो जाए, हमें पूछे बगैर कैसे हो, हम मैं जो हुक्मरान है हम मैं जो सब करने वाले हैं और ये तो सब मिले हुए आपस के अंदर। इसलिए देखिए ना इसीलिए फिरौन ठीक है एक बादशाह तो था लेकिन फिरौनियत जो है ना वो आज भी खत्म नहीं हुई। फिरौनियत एक रवैया है जो फिरौन के अंदर वो जो उसका बिहेवियर था ना वो आज भी जिंदा है बिहेवियर में। हुक्मरान खत्म हो गया वो बादशाह खत्म हो गया मगर फिरौनियत खत्म नहीं हुई। वो जुल्म, वो जबर, वो लोगों के ऊपर हाकमियत है, अपनी धौंस जमाना, ये लोग अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, अपना दीन भी खुद चूज नहीं कर सकते, वो भी पूछना है। और आज दुनिया के अंदर कितनी जगहों के ऊपर ऐसा, जहां पर सिर्फ इस वजह से सताया जाता है कि आपका दीन ये क्यों है। और सिर्फ उनको ही क्या कहे, जो किसी जगह पे भी बॉस बन जाता है, अगर वो इंसाफ पे नहीं है और उसमें खुदा खौफी नहीं है, तो उसमें फिरौनियत आ जाती है। चाहे वो घर की कोई औरत ही क्यों ना हो, उसमें भी फिरौनियत आ जाती है अगर खुदा खौफी नहीं। असल तो चीज खुदा खौफी है जो इंसान को सीधा रखती है, वरना फिरौन बनने में तो ये जरा भी देर नहीं लगती। जिसको जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, जिसको जहां कोई इख्तियार मिल गया, अथॉरिटी मिल गई, कुर्सी मिल गई, उसने कहा मैं ही आज सबसे बड़ी चीज हूं, वो फिरौन बन जाता है। चाहे वो एक छोटी सी कुर्सी क्यों ना हो, एक क्लर्क का ओहदा हो, एक वो क्योंकि गेट पे जो कोई गार्ड है खड़ा हुआ, चाहे वो ही हो, जब खुदा खौफी नहीं होती ना, तो एक घर में रहने वाली औरत भी फिरौनियत का सा रवैया रखती है। फिर मैं, मेरी इजाजत, मेरा घर, मेरे के, मैं किसी की क्या मिजाल है वो मेरे आगे को सर उठाए। उसने कहा तुम तो आपस में मिले हुए हो। अब देखे सारे लोगों को भी तो उसने कुछ बताना था ना, लोग भी, ये ना होता कि सारे भाई ये भी ये जादूगरों को देख के ये भी कहीं ईमान ना ले आए, तो ताकि उनको कंफ्यूज कर दिया जाए। आम आवाम जो होती है वो तो इतनी सोच में पड़ती ही नहीं, वो तो जो उनको जिधर को लगा लेता है वो उसके पीछे ना भेड़ बकरियों की तरह चल पड़ती। तो अब वो फौरन एकदम इम्प्रेस हो गए थे ना सब लोग देख के, तो ये ना हो कि कहीं ये ईमान ले आए, ये भी कहीं सोचना ना शुरू कर दे। तो उसने ऐसा चाल ऐसी चली, ऐसा उनको कंफ्यूज किया कि उनके भी दिल में ख्याल आने शुरू हो गए, वाकई पता नहीं शायद ये आपस में मिले ही हुए थे और ये सारा ही नूरा कुश्ती थी, ये तो इनकी मिली भगत है। ठीक है, फला उकत्ती अन्ना अईदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, तो अलबत्ता मैं जरूर काट डालूंगा तुम्हारे हाथों को और तुम्हारे पैरों को, खिलाफ सिमत से, यानी मुखालिफ सिमत से मतलब क्या, राइट हैंड और लेफ्ट पैर काट दूंगा, या लेफ्ट हैंड और राइट पैर काट दूंगा, मुखालिफ से ज्यादा, ताकि और अजियत देने के लिए ना। वाला उसली बनना को, वैसे ही किसी को कह दिया जाएगा कि वो गोली मार देगा या कुछ, अब वो एक अलग चीज होती है, लेकिन मैं ऐसे करूंगा कि मैं तुम्हें सलीब दूंगा, यानी ये सूली पे चढ़ाना ना, ये फिरौन से शुरू हुआ कि सूली दी जाए, तो मैं सूली पे चढ़ा दूंगा तुमको, फी जुजुअ नखल, खजूर के तने के साथ, वला ताला मुन्ना, और अलबत्ता तुम जरूर जान जाओगे, तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाएगी, अयुना अशद्दु आदाबं व अबका, कौन हम में से ज्यादा शदीद है अजाब देने में और बाकी रहने वाली में, ज्यादा देर पा, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कौन है अजाब में। अब देखें ये वाली जो बात है, सजाएं तो कहीं, जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास फिर दलील नहीं होती ना, वो धमकियों पे उतर आते हैं, देखना हम तुम्हारे साथ करते क्या है, देखे तुम्हें, हमें तुम्हें हम मजा चखाएंगे, अब तुम्हें हम ऐसे कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हें फलां। अब एक तो ये बात कही, दूसरी लास्ट बात पे आप गौर करें,